अभी मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता पीताम्बर आचार्य जी को, जिनको हमने कल भी सुना। आज आपको शीघ्र ही प्रस्थान करना है, इसलिए अभी मैं सर्वप्रथम आपको आमंत्रित करती हूँ। मेहमानों से अनुरोध है कि आप कहीं जाएं नहीं, अपना सेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। और मंचासीन मेहमानों से अनुरोध है कि कृपया अपने संक्षिप्त में अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे।
Esteemed Chief Guest, Honorable Justice Aluwalia Ji, Justice Naik Ji, Justice Rathi Ji, Raj Yogini Sudesh Ji, Puspa Ji, and other esteemed dignitaries and dais, delegates from all over the country, dear advocate friends, brothers and sisters. After Justice Aluwalia's more than an hour long address, I think time has become a constraint for everyone on dais, especially for the speakers. So being a courtroom practitioner, I'll be very much conscious of the time sense. So my speech would be very brief and precise and objective to the point. Incidentally, yesterday I had an occasion to throw a light on the topic, value-based justice, the soul of law. I am sure many scholars from different parts of the country, those who have participated in this conference, would contribute for deliberations. But one thing, let me be very clear. Before I come to the essence of the topic, ours is a system which is principally governed by a sacred constitution, which is the supreme law of the land. When we talk of judiciary as one of the organs of the government, neutrality being the essence of it, value justice is supposed to be value-based. But I was wondering yesterday and today too, what is the significance of the topic in the present context? Are we really lacking somewhere? Are we really lagging behind the spirit of the Constitution and the value which is supposed to be inculcated in the justice delivery system? Answer may be very straight. People have started doubting us. Let me be very bold and brazen in my statement. Dr. Rashmi ji was talking of Justice Bhagavati's apology in the public way back in 1975, when there was horrors of emergency. Life and liberty, the most precious right engrafted in Article 21 of the Constitution, was endangered. Four Supreme Court judges, with great respect to the souls, came heavily against individual liberty, save and except the dissent judgment of Justice H.R. Khanna. I need not go back to the whole history. Justice Khanna, before going to the courtroom to deliver the dissent judgment, had a conversation with his sister that I am going to the courtroom and this judgment may deprive me of becoming the Chief Justice of India. And it so happened. Three of the honorable judges of the Supreme Court had to resign, Justice Saylor, Justice Grover, Justice Khanna, paving the way for a junior most judge to adorn the seat of Chief Justice of India. Here comes a challenge to the concept of value-based justice, motive and fear. When it predominates the thirds of a judge, justice is bound to be valueless. The same historical wrong, that is a concept which we always tell, legal wrong and moral wrong. A judge may be legally incorrect, but when the moral values degrade and it is reflected in the essence of the judgment, it is both legally and morally flawed. To all is human, it is a common feeling that every human being who sits either in the seat of authority may commit wrong. But intentional wrong, which is actuated with motive, fear, and something for self-interest, is bound to degenerate the society, which is largely reflected in the justice delivery system. Friends, I will not speak much. When I assume this office, since I am in the other side of the bar as a practitioner, 35 years in the bar, and in the government role as the principal law officer of the government. When I assumed office last July 24, when I was reviewing the pending litigations both in High Court and Supreme Court, many things disturbed my conscience. You may not believe, out of about 5,000 pending litigations in Supreme Court, specially petitions, about 1,500 were directed against the poorest of the poor persons of the society. One such large batch matter relates to compassionate appointments. You might have heard rehabilitation or compassionate appointment, which is given as a gratis to the members, family members, either the wife or the children of a deceased government employee. Every government is a welfare measure, and it is the bounden duty of the state to promote and protect the welfare of its own employee. When a government servant dies, there is a scheme for rehabilitation of the family member against a Group C or Group D post, which is as either a clerk or a peon. You'll be surprised. The rule provided in 1990 that certain criteria would govern those appointments. During the horrors of COVID 2020, when the whole human civilization was struggling with life and death, the government came with a rigorous policy how to deprive those people by making some amendments, not to give the poor job seekers employment in government service. Around 2,000 litigations, both in High Court and Supreme Court, I discussed with the Chief Minister, it was brought to the Cabinet, law was amended, and all those pending cases in both Supreme Court and High Court were withdrawn. This is called compassion and humanity. I will not speak much. Let the deliberation come out success, and the topic which you have chosen rightfully at the right moment, let it transcend the boundaries of this conference hall and tell the whole civilization that justice has to be tested in the touchstone of values and values alone. Om Santi Jai Jagannath.
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता पीताम्बर आचार्य जी. भाई सब से अनुरोध है, भ्राता पीताम्बर आचार्य जी को अभी निकलना है, इसलिए प्रस्थान करने से पूर्व आपसे अनुरोध. आदरणीय करुणा भाई जी आपका सम्मान कर रहे हैं, आपको ईश्वरीय सौगात भेंट कर रहे हैं. अभी मैं आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी के नायक, फॉर्मर जज हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा. आप आएंगे और अपने इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करेंगे. ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी के नायक.
ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ दिस सेशन, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया, chief guest of this session, other bhaiyon aur behno on the dais, bhaiyon aur behno under the dais, other dignitaries, we had a discussion and deliberation last evening in the reception session, and whatever I have spoken was with regard to value-based justice, with reference to the justice delivery system in the country, that is our Nyayapalika, the judiciary. आज मैं थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी में बोलूंगा. अगर हिंदी वोकैबुलरी या ग्रामर में कुछ गलत हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो क्षमा करना. बात ऐसे है कि मैंने भी कल बोला था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन legal justice and true justice. हम जो value based justice के बात कर रहे हैं, that is true justice. And हमारे chief guest honorable justice आलूवाला अब जो बता के गए हैं, जो court judgment कैसे देते हैं, वो डिस्प्यूट के जो फैक्ट सिचुएशन होते हैं, उसके बारे में जो एविडेंस डॉक्यूमेंट्री हो, ओरल हो या दोनों हो, आते हैं, वो उसको में से जो इश्यूज निकलते हैं, उसको जो कंसर्न रिलेटेड सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल के टचस्टोन पर उसको वो देखते हैं, फिर देखते हैं जे व्हाट इज द ट्रूथ, कौन सच बोल रहा है, फर्स्ट पार्टी बोल रहा है, सेकंड पार्टी बोल रहा है, कॉम्प्लेनेंट बोल रहा है, या अक्यूज बोल रहा है, प्लेंटिव बोल रहा है, या डिफेंडेंट बोल रहा है, फिर वो डिसीजन देते हैं. लेकिन फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जा सकता है, एविडेंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, फर्जरी किया जा सकता है, ये सब होते हैं. केस जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, पार्टीज करते हैं. कभी कभी यहां तो बहुत सारे लॉयर्स हैं, डोंट टेक ऑफेंस, कोई कोई लॉयर्स भी करते हैं, दे असिस्ट their clients to manipulate evidence, to distort facts, accordingly jo judgment aata hai court ka wo legally to correct hota hai according to the facts on record according to the evidence on record, according to the legal principles that are applicable to the fact situation. लेकिन होता क्या है? वही question उठता है whether there was a true justice, whether truth has come out, whether truth has been found out. अगर truth नहीं आता है, facts distort किया जाता है, evidence manipulate किया जाता है, तो हम कहते हैं judgment तो correct है. On the face of it, keeping in view the facts and the evidence on the court, it's a nice judgment, fine judgment, correct judgment, legal correct. But the truth lies elsewhere. Therefore, it cannot be said to be a valueless justice. मैं मेरा personal experience में एक छोटा सा instance दूंगा. हाईकोर्ट बार में प्रैक्टिस करते हुए जब मैं डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर सिलेक्ट हुआ तो मेरा पहला पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज. तो वहां एक मेरा पहला मर्डर केस ट्रायल को आया मेरे सामने. वो केस था क्या, एक आदमी उसका पत्नी का हत्या कर दिया था. Of the entire case was based on circumstantial evidence only. कोई आई विटनेस नहीं था. और आप सब जानते हैं, जो पर्टिकुलर लॉयर्स जजेस सब जानते हैं, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर अगर केस विचार किया जाता है, द कोर्ट मस्ट फाइंड दैट द चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस आर सो कंप्लीट एज नॉट टू लीव एनी स्कोप फॉर डाउट दैट the accused was not the culprit, but there is chance of somebody else coming in between. और कोई भी कर सकता था कि कर सकता है, अगर वो chain of circumstance का जो link होता है वो अगर कहीं एक जगह पे भी वो chain complete नहीं होता या drilling हो जाता है तो accused will have the benefit of doubt and he will go scot-free. He has to be acquitted. वो केस में क्या हुआ था, एंटायर रिकॉर्ड पढ़ने के बाद, एविडेंस पढ़ने के बाद, पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद मेरा आई वॉज 100% श्योर दैट द एक्यूज वॉज द कल्प्रिट, ही हैड कॉज्ड मर्डर ऑफ हिज वाइफ. आई वॉज श्योर, बट द चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस वॉज नॉट कंप्लीट. बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे लेकिन एक जगह पे एक डेफिशिएंसी था जो चेन को कंप्लीट नहीं करता था. सो लीगली आई कुड नॉट हैव कन्विक्टेड हिम. दो तीन दिन मैं सोचता रहा जजमेंट के बारे में. आई वॉज बेंट अपन टू कन्विक्ट हिम बट द लॉ टाइड माई हैंड्स. अगर कुछ ट्विस्ट करके उसको जजमेंट कन्विक्शन का दे देता तो अपीलेट कोर्ट में वो खलास भी हो जाता. क्या करता, दो तीन दिन सोचने के बाद मैं उसका एक्विटल जजमेंट लिखा, ओपन कोर्ट में उसका जजमेंट प्रोनाउंस किया उसका लॉयर के साथ. जस्ट इट वॉज बिफोर द रिसेस और लॉयर को, डिफेंस लॉयर को बोला कि एक्यूज को लेकर थोड़ा हमारे चैम्बर में आना. Because I was so emotionally disturbed by that judgment. So accused aaya chamber mein. Accused statement ke tauran jo uska the lawyer bataya hoga, judge kuch bhi puchhenge to sab na na sab deny karna hua tha. To mera chamber mein aaya accused, main usko bola, main kaha dekho bhai, मैं तो 100% श्योर हूं कि तुमने तुम्हारा पत्नी का खून किया है, लेकिन वो चेन ऑफ एविडेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है इसलिए तुम कॉन्विक्ट नहीं हो सकते. इसलिए मैं एक्विटल जजमेंट पास किया है। तो मैं खलास करता हूं, किंतु आई एम सेटिस्फाइड दैट यू आर द मर्डरर। ये कोर्ट से तुम निकल जा रहे हो, किंतु और एक कोर्ट है ऊपर, वो भी देख रहा है क्या हुआ मेरे को। इसको भी बोलना पड़ा मेरे को, मैं संभाल नहीं पाया अपने को। तो उसको बोला, जब इतना मैं बोला तो ऊपर रो पड़ा। मैं तब उसको पूछा नहीं तो तुम मर्डर किया है या नहीं किया है, जजमेंट तो डिलीवर हो चुका था, लेकिन वो वहां से रोते रोते निकल के गया। इट्स क्वाइट राइट दैट द लॉयर हैज अ ड्यूटी टुवर्ड्स हिज क्लाइंट एंड द क्लाइंट हैज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड by a lawyer of his choice, constitutionally. लेकिन यहां क्वेश्चन उठता है, जो लॉयर उसका उसका क्लाइंट को सही एडवाइस दे या गलत एडवाइस दे, मेरे ख्याल से तो हमेशा सही एडवाइस देना चाहिए। ऑफ कोर्स इन क्रिमिनल केसेस मैं तो बता नहीं सकता, अभी भी आई एम नॉट श्योर। अगर एक एक्यूज जो अरेस्ट आके हुआ है कोर्ट में प्रोड्यूस हो चुका है, अगर वो आपको एक लॉयर करता है, अगर लॉयर पूछे क्या तुम मर्डर किया है, वो अगर हां कहेगा तो लॉयर क्या करेगा, बोलेगा तो कोर्ट में कन्फेस कर गिल्ट, या वो उसको डिफेंड करेगा, उसके बारे में आई हैव नो आंसर। बट सिविल केसेस में बारे में मैं बता सकता हूं, अगर सिविल केस उसको रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स ये सब कुछ देखने के बाद और क्लाइंट की जो साइड है उसको सुनने के बाद अगर लॉयर फील करता है कि ना उसका केस में कुछ दम नहीं है, ही हैज नो चांस टू विन, सो ही मस्ट गिव हिम प्रॉपर एडवाइस दैट यस यू हैव नो केस। जस्ट लाइक यस्टरडे आवर वन ऑफ आवर गेस्ट लेडी एडवोकेट कमिंग फ्रॉम दिल्ली वाज सेइंग दैट यस सॉरी एडवाइस लॉयर को देना चाहिए, जब तुम्हारे केस में कोई दम नहीं है, देयर इज लीस्ट चांस ऑफ विनिंग। उसके बाद भी अगर क्लाइंट इंसिस्ट करता है ना, जो भी हो रिजल्ट आप केस कीजिए, तो केस फाइल किया जा सकता है। डिफेंस की बात अलग है। सिविल केस में अगर समन इश्यू होने के बाद डिफेंडेंट आता है तो तुमको तो डिफेंड करना ही चाहिए, तो उसको तो हम मना नहीं कर सकते। फिर भी जो भी आएगा बाद में, रिकॉर्ड्स आएगा या फैक्ट सिचुएशन जो आएगा, जो जो एविडेंस मिलेगा उसके बेसिस पर उसको करना है। लेकिन जितने के लिए फैक्ट को ट्विस्ट करना, एविडेंस मैनिपुलेट करना, फॉल्स एविडेंस क्रिएट करना, ये सही नहीं है। There is the degradation of value in the profession. And justice system का judges जितना तो एक हिस्सा होते हैं, लेकिन सबसे और एक बड़ा हिस्सा होते हैं lawyers होते हैं, litigants होते हैं। They are bigger stakeholders. They bring the facts, they bring the evidence before the court, and the court only assesses them, balances them, you know, to find out the truth. So, a legally correct judgment mein, so far as the judge is concerned, usne kuch shayad galat nahin kiya hoga. अगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, एविडेंस प्लांटेड हुए हैं, तो वो तो डेफिनेटली जो जजमेंट आएगा वो जजमेंट विल नॉट बी कॉल्ड एज ट्रू जस्टिस और वैल्यूबेस्ड जस्टिस। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, ये जो वैल्यूबेस्ड जस्टिस, व्हाई डू वी कंफाइन इट ओनली टू द न्यायपालिका? न्यायपालिका को कन्फाइन करने के लिए वैल्यूबेस्ड जस्टिस की जरूरत नहीं है। जस्टिस इज ए वेरी ब्रॉड टर्म इन एवरीडे लाइफ। एवरीबडी इज सीकिंग जस्टिस समवेयर। हमारे जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसमें प्रोविजन है, और प्रीएम्बल तो मैं बोला था यस्टरडे, हमने इट इज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हाउ डज द प्रीएम्बल स्टार्ट्स? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट डजंट से that the state will give justice or secure justice. It says that we the people of India having solemnly resolved to constitute India to so and so and to secure to its citizens justice, social, economic and political. Constitution also speaks about liberty, equality. These are the principles which are the basis for governance of the country, and our policymakers, our legislators, they legislate laws for securing social justice, economic justice for the people. और उसके तहत कितने सारे स्कीम्स आ रहे हैं, जिसका घर नहीं उसके लिए घर, जिसका इनकम नहीं उसके लिए भत्ता। अब तो इतने सारे भत्ते जो आ रहे हैं फ्रॉम जन्म से मरण तक बहुत सारे भत्ते मिल रहे हैं। दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ सोशल जस्टिस, फॉर सिक्योरिंग सोशल जस्टिस। सरकार ने नीति नियम बना रहे हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत सारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ब्लॉक लेवल में वीडियोज है, पंचायत लेवल में सरपंच है, ग्राम पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर्स है, पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, वो ग्राम रोजगार सेवक है। दीज आर द ग्रास रूट लेवल ऑफिशियल्स हु एग्जीक्यूट दीज स्कीम्स। बट द क्वेश्चन इज वेदर the real beneficiary of these schemes get the benefit? No. In majority of cases, ऐसे जब मैं हाई कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद आई वॉज अ मेंबर जुडिशियल ऑफ आवर स्टेट लोकायुक्त फॉर 5 years टिल 2024। हमारे पास ऐसे किसको भत्ता पाना है उसको मिला नहीं, जिसको नहीं पाना है उसको मिला, जिसको घर मिलना चाहिए जो हकदार है, कानूनन हकदार है, उसको नहीं मिला, लेकिन जो उसका जिसका पक्का घर है, कार है, उसको वो घर मिल रहा है जो कि वो हकदार नहीं है। ऐसे बहुत सारे हंड्रेड थाउजेंड सब कंप्लेंट्स हमारे पास आते थे। तो बात यह है कि ये जो अधिकारियों हैं जो सब उसका इंप्लीमेंटेशन करने के चार्ज में है, दायित्व में है, वो क्या जस्टिस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो कानूनन योग्य नहीं है उसको देते हैं, मतलब क्यों, किस लिए देते हैं? बिकॉज दे टेक ब्राइब फ्रॉम सच पीपल। और जो कानूनन एंटाइटलमेंट जिसका है और उसको नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता? बिकॉज somebody else takes his share और he is unable to pay bribe. Okay. तो ऐसे बात है। तो मेरा बोलने का मतलब है, ये जो हम एक जस्टिस टर्म को सिर्फ न्यायपालिका के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, जस्टिस उनमें से भी मिलना चाहिए जिस लोगों ने इस टाइप का जस्टिस देने के लिए नियुक्त किए गए हैं, अगर नहीं दे रहे हैं। अभी अभी हमने सुना और वो बात भी करेक्ट है, देश में मोर देन 5 करोड़ जजमेंट केसेस पेंडिंग है। किस लिए? अगर इन एग्जीक्यूटिव अधिकारियों ने, अगर जो हकदार है उसको अगर हक देता तो वो कभी कोर्ट के पास नहीं आता। अगर जो हकदार नहीं उसको नहीं मिलता तो भी केस, कोई केस नहीं आता। इसके लिए केस भी बढ़ रहे हैं और उसका डिसाइड करने के लिए भी टाइम बहुत लगता है, देयरफॉर देयर इज डिले इन जस्टिस। एनीवे, माय टाइम इज अप, आई हैव बीन ऑलरेडी गिवन नोटिस। सो लास्टली मैं इतना बोलूंगा कि ये जो कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, ये जो ह्यूमन वैल्यूज जो होते हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, राइचियसनेस, अगर आदमी के पास ये सब होगा तो ऐसे अनफेयर एक्टिविटी, इलीगलिटी में इंडल्ज नहीं करेगा और व्हाट एवर जस्टिस विल कम आउट ऑफ दैट, दैट विल बी ट्रू जस्टिस एंड दैट विल बी द वैल्यू बेस्ड जस्टिस। और ब्रह्मांड कुमारी संस्थान इस बारे में जो काम कर रहे हैं, मैं उसको बड़ा हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और मैं बोलता हूं ये सिर्फ ऐसे लॉयर्स को, जजेस या ओनली लीगल फ्रैटर्निटी को लेकर ये कॉन्फ्रेंस ना करते हुए, ये सब ये जो वैल्यूज है वो वैल्यूज को इंसान को बचपन से सीखना चाहिए। ऐसे फंक्शंस कम से कम हाई स्कूल और कॉलेज में होना चाहिए, सो दैट कैरेक्टर ऑफ द पीपल और स्टूडेंट्स विल बी बिल्ट एंड दे विल बिकम गुड सिटीजन्स। मुझे ये अवसर देने के लिए, यहां बोलने के लिए मैं संस्थान को धन्यवाद देता हूं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस नायक जी। हम आपसे क्षमा प्रार्थी है, परंतु समय का बहुत अभाव है, इसलिए हमें आपको कहना पड़ा। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय करुणा भाई जी को, राजयोगी करुणा भाई जी, सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज आबुराज। आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। करुणा भाई जी इस इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी जनरल है और आप मीडिया विंग जो है, जैसे जूरिस्ट विंग है, उसके आप चेयरपर्सन है। आप ब्रह्मा कुमारीज का जो भी मल्टी मीडिया है उसके भी चीफ है और ब्रह्मा कुमारीज के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स भी है। ट्रस्ट वर्ल्ड यूनियन स्पिरिचुअल ट्रस्ट के सीनियर ट्रस्टी है और राज्य का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन जिसके अंतर्गत ये सारी विंग्स आती है उसके आप बोर्ड मेंबर हैं। एंड इंडियन नेशनल कोऑर्डिनेटर के आईटी एंड ग्लोबल वीडियो सर्विसेज के आप चीफ है। और आप जो पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल चलता है, अवेकनिंग टीवी चैनल चलता है, उसके स्रोत आप ही हैं। आप ही की प्रेरणा से ये सब चैनल्स ओपन हुए हैं। हमारा रेडियो मधुबन एक चैनल है, उसके भी आप चीफ हैं। और शिवा रेडियो एक वेब रेडियो है, उसके भी चीफ हैं आप। तो उनका बायोडाटा बहुत लंबा है लेकिन समय के अभाव से मैं आप नहीं दे रही
हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, आज हमारे साथ ऑनरेबल जजेस भी है और लॉयर्स भी है और आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले हमारे ब्रह्मा कुमारी टीचर्स भी है। तो ये एक समूह बहुत ही अच्छा किस तरह से हम सबको एकत्रित किए हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि ये कार्य केवल ईश्वर ही कर सकता है। तो आप सभी यहां पधारे हैं तो आपके अंदर कुछ आध्यात्मिक के लिए भी इच्छा है, तभी तो ब्रह्मा कुमारी इसमें आए हैं। तो वैल्यू बेस्ड न्याय कहते हैं, तो वो हमारे जजेस भी इसीलिए है। परंतु इस समय पर एक बात बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो ये है, टाइम नहीं है। जिससे भी पूछो टाइम नहीं है, परंतु हमको पहले पहले शिक्षा ब्रह्मा कुमारी बहन ने दिए है कि एक ऐसा समय हमको दिए है जो आप दो तीन दिन में इसका अभ्यास करेंगे, वो है सुबह 4 बजे से हम लोग 45 मिनट्स परमात्मा के चिंतन में हम लोग बैठते हैं। क्योंकि हम सब विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक है। हो सकता है आपका उसके बारे में अपने अपने विचार भी होगा, परंतु यहां हमको दो बात पहले सिखाते हैं कि वैसे अपना परिचय देते हैं हम लोग जजेस लॉयर्स, परंतु यहां हमको बताया जाता है कि भई अब सब जन्म लिए हैं, शरीर तो छोड़ना ही है। तो जो भी हम अपना परिचय दे रहे हैं वो तो शरीर के साथ हो जाता है, तो फिर हम कौन है जो इतना कार्य कर रहे हैं, सबका भला सोच रहे हैं, अपनी भला दूसरों का भी भला करें, तो आखिर है कौन हम? तो ये गुप्त शिक्षा अब तक हमको किसी ने नहीं दिया है, नहीं सिखाया है, जो वो हमको यहां सिखाते हैं कि भाई हम ये शरीर नहीं है, जो देखने वाले बोलने वाले सुनने वाले वो एक चैतन्य आत्मा है, ज्योति है। तो हमको ये शिक्षा यहां मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर के कि मरता शरीर है आत्मा नहीं है। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा कभी मरता नहीं है। तो हम जो भी यहां बैठे हैं कभी हम मरने वाले नहीं है। शरीर लिए है तो शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा। हमारे लिए एक शिक्षा जिसको सारी दुनिया ढूंढ रहे हैं कि शांति चाहिए, युद्ध चल रहा है, अब बताइए किसी लिए? हर एक को शांति चाहिए, तो ये कहां मिलता है? कौन सा मॉल मिलता है? मॉल में मिलता है? तो यहां आप बैठे हैं, देखो इतना टाइम बैठे हैं आप, तो कुछ तो अच्छा लग रहा है कि भाई कुछ शांति है। यहां जब आए आप माउंट आबू पहुंचते ही आप लोगों को कुछ शांति का अनुभव हुआ था, तो जाने से पहले भी आप अपना अनुभव लिखेंगे तो हमको बहुत शांति मिला। इसीलिए इसको प्राप्त करने के लिए, सहज प्राप्त करने के लिए, तो उसका नाम ही इन्होंने रखा है सहज राजयोग। लोग खास मेडिटेशन सीखने के लिए जाते हैं। यहां आपको हमारी बहनें 3 दिन के अंदर आपको एक राजयोग करना विधि, किस प्रकार से हम अपने अंदर एक शांति का अनुभव कर सकते हैं, तो वो आपको यहां सिखाया जाता है। आप जानते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विश्व 140 देश में है। आप जानते हो कि हर एक देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है, तो क्या ब्रह्मा कुमारी सबका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े? वो तो नहीं हो सकता है। भले हमारे लिए देश अलग, भाषा अलग, रूप अलग, परंतु विश्व एक ही है। और इस विश्व में जो 5 तत्व है, हवा, ये सब जगह एक ही है, अलग नहीं है। और हमको यहां भी ये पक्का कराते हैं कि एक विश्व है और एक ये प्रकृति का नियम है, 5 तत्वों से बना हुआ, इसी विश्व में है, एक ही विश्व में, और हम सबको ये चाहिए। तो फिर ईश्वर भी तो एक ही होगा जिसने ये बनाया। तो आप देखो कितना सुंदर शरीर दिया है हम लोगों को, जो आप चाहे कर सकते हैं। और हर एक को आईने में देखते हैं तो खुश होते हैं, भाई मैं हूं ये। तो ऐसा सुंदर हम लोगों को मॉडल बनाया बाबा ने, बहुत अच्छा। तो इसीलिए ईश्वर भी एक ही है, हम सबको माँ बाप एक एक ही है। ऐसे ही इस विश्व का त्वमेव माताश्च पिता, माँ बाप भी एक ही है, वो ईश्वर है। तो वो हमको अनुभव कराएंगे हमारी बहनें ये 3 दिन के अंदर, जो सुबह अमृत वेला जिसको कहते हैं, 4 से 4:45 बजे तक आप यहां मिस नहीं करेंगे। तो आप जो यहां से जो अनुभव ले जाएंगे उसका आप लाइफ लॉन्ग, आपके लिए ये वो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होगा। ईश्वर ने हम सबके लिए, मानव के लिए एक लॉ बनाया है, एक ही लॉ, वो भी एक वर्ड सबके लिए। उसको हम कहते हैं कर्म। कर्म को वर्णन कर सकते हैं आप, अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म है, बुरा कर्म है। कर्म के बारे में नॉलेज थोड़ा कुछ आप लोगों को 2-3 दिन में तो बताया जाएगा, जो हम क्या करें आखिर, तो वो विधि भी आपको मालूम पड़ेगा। कि मैं आपको बताऊं तो मैंने यही सीखा है, जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं वही दूसरों को भी बताऊंगा और दूसरों के लिए भी करूंगा। जैसे माँ बाप बच्चों के लिए उनका भला सोचते हैं और वही करते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करते, तो हम यही सोचते हैं कि ईश्वर के हम सब बच्चे हैं, तो ईश्वर हमारे लिए विश्व कल्याणी, हमको श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। तो इस सृष्टि में ईश्वर का जो नियम है उसका नाम है कर्म। आप अभी तक जो सुने हैं तो क्या कर्म करना चाहिए और कैसे बुरे कर्मों से अलग हो जाना चाहिए, ये सब बात आपने अभी तक सुना है। तो ये एक और कानून भी हमको हमारे बहने सिखाते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लेना, डोंट टेक लॉज इन योर हैंड, कभी भी नहीं तो पुलिस वाले क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेंगे, हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, बोलते हैं ना ये तो अपना कर्म है। किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे देखो ये खाना खा रहे हो आप ऐसा कर रहे हो इसीलिए आप बीमार पड़े। तो इसीलिए हम लोगों को ये भी शिक्षा दिया जाता है कि किस तरह से हम लोगों को अच्छा ही कर्म करना है, कानून हमारे हाथ में नहीं लेना है। तो ये विश्वास रखते हैं हम, जो आप ये तीन दिन के बाद जाने के बाद कभी भी आपसे ऐसा कोई कर्म नहीं होगा, ऐसा काम आप नहीं करेंगे जो भले बच्चों के लिए हो या आपके साथियों के साथ हो, तो हम लोग एक ही काम करेंगे। हमारा देश में एक शिक्षा था, आजकल हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज ये सब बोलते हैं हम लोग, दो दो साल तो लॉ भी पढ़ने में जाता है। तो यहां भारत में एक शिक्षा थी, इसको गुरुकुल शिक्षा कहते थे, आचार्य शिक्षा देते थे सभी को, चाहे वो कोई भी हो। तो हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहनें जो शिक्षा देते हैं सबके लिए, हमारे पास किसी भी प्रकार का कभी ये नहीं पूछा आपका कास्ट क्या है, धर्म क्या है, कुल क्या है, देश क्या है, कभी भी नहीं पूछा इन्होंने। सबके लिए ये शिक्षा देने की जो शिक्षा, जिसको गुरुकुल शिक्षा कहते थे, तो अभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहां भी ऐसी शिक्षा हमको देते हैं। तो मैं अपने जीवन में जो अनुभव कर रहा हूं वो आपके सामने मैं रखा हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन से हम लाभान्वित हुए हैं और सभी को अपना जीवन कैसे वैल्यूएबल बनाना है इसकी प्रेरणाएं भी हमें मिली है। आप सभी से अनुरोध है, सभा में बैठे हुए सभी भाई बहनों से अनुरोध है, आपका कार्यक्रम समाप्त होगा उसके पश्चात आपको भोजन मिलेगा, भोजन समाप्त नहीं होगा, इसलिए आप कृपया थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, अपना कार्यक्रम समाप्त होने की ओर ही है। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय लता दीदी जी को, आप जूरिस्ट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आपने बॉम्बे से यह ज्ञान लिया है, बॉम्बे में ही या बॉम्बे हाईकोर्ट में आप प्रैक्टिस करते थे, वहां पर प्रैक्टिस करते हुए ही आपको ये ज्ञान मिला और आपको एक प्रेरणा आई कि मुझे भी विश्व सेवा करनी है, इसलिए आप इस हेडक्वार्टर में आपको बुलाया गया एज एन एडवोकेट के रूप में और आप इस हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर की लीगल एडवाइजर है और हमारे जितने भी सेंटर्स हैं उनके आप जो भी कन्वेंसिंग का काम होता है वो भी आप करते हैं सुचारू रूप से, जितने भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस आदि होती है देश में विदेश में इन सबको आप हैंडल करते हैं, आपके हिसाब आप ही मैनेज करते हैं। दो शब्द आपके लिए कहना चाहूंगी, लव और लॉ का अनोखा बैलेंस रखती है आप, लव और लॉ का अनोखा बैलेंस रखती है आप, सोने सा दिल और ऊंचे संस्कार रखती है आप, नारियल जैसी दृढ़ता में भी छिपा है स्नेह अपार, सच्ची फिलोंथ्रोपिस्ट बन आप सबके दिलों में बसती है आप। आदरणीय लता दीदी जी आपको राजयोग का अभ्यास कराएंगे।
ओम शांति। आप सभी बोले मेरे साथ तीन बार, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं। क्योंकि राजयोग सीखना है एक्सपीरियंस करना है तो अभी तक बैठे बैठे थोड़े तो थोड़ा हिल लें अपने आप को थोड़ा हिला लें हाथों को फैला दें ऐसे फिर थोड़ा झुक जाएं ऐसे सब थोड़ी एक्सरसाइज एक मिनट की कर लें तो फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि मेडिटेशन में फ्रेश माइंड की बहुत आवश्यकता होती है तो अब आपकी नींद भी उड़ जाएगी और यू विल बी फ्रेश आप बैठ सकते हैं सभी ब्रह्मा कुमारीज में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है वो स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस ऑफ द माइंड हमारे मन में स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस है उसके साथ साथ हमारे इंटेलेक्ट के अंदर इमेजेस क्रिएट करना है तो हमें सेल्फ के लिए थॉट प्रोसेस और सुप्रीम बीइंग के लिए इमेजेस क्रिएट करनी है सुप्रीम बीइंग के लिए क्रिएट करते हुए उन्होंने जो क्वालिटीज है लव पीस जॉय हैप्पीनेस ब्लिस पावर प्यूरिटी ट्रूथ इन सब को हमें उनसे अपने अंदर भरना है तो शॉर्ट में इतना ही बोलते हुए अभी हम सब मेडिटेशन में बैठेंगे आप सभी सीधे होके अलर्ट होके बैठे अभी तक जो सुना है वो थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए और जो भी आपने पहले भी सुना हुआ है वो भी भूल जाइए अभी आप फ्रेशली जो मैं यहाँ से आपको थॉट्स दूंगी जो मैंने कहा माइंड एंड इंटेलेक्ट मन और बुद्धि दोनों को हमें कंबाइंड करते हुए परमात्मा से कनेक्ट होना है और वहां से हमें अपने अंदर वैल्यूज और पावर्स को लेना है इसीलिए हम अभी अपने माइंड और इंटेलेक्ट को दोनों को आप चाहें तो सामने पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं वहां कॉन्सेंट्रेट करते हुए मैं विचार देती जाऊंगी उस हिसाब से विचार करते हुए इमेजेस को क्रिएट करना है ओम शांति मैं एक शुद्ध चैतन्य पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी हूं इस शरीर की मालिक हूं मैं अब अपने आप को आत्मस्थिति में स्थित करते हुए मन बुद्धि शरीर कर्म इंद्रियां सबको अपने वश में कर रही हूं मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं मैं आत्मा अब थोड़े समय के लिए अपने शरीर भान से न्यारे होकर अपने आप को एक शक्तिशाली पॉइंट ऑफ लाइट अनुभव कर रही हूं अब मैं ये लाइट ऊपर की ओर परमात्मा से मिलन मनाने की यात्रा कर रही हूं इस देह की दुनिया से परे चांद सितारे सूर्य तारागण से भी ऊपर सूक्ष्म लोक से भी ऊपर मैं अपने स्वीट साइलेंस होम में पहुंच गई ओहो यहां का दृश्य कितना सुंदर और मनमोहक है। गोल्डन लाल प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है और सितारों के रूप में आत्माएं चमक रही हैं और सबसे ऊपर मेरे परमपिता परमात्मा जो जिनका रूप भी मेरे समान पॉइंट ऑफ लाइट है मगर सर्वशक्तिमान होने के कारण उनकी लाइट बहुत तेज है। अब सर्वशक्तिमान परमात्मा जो सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान के सागर हैं उनमें से रंग बिरंगी किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप बन रही हूं। मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हो रही हूं। मैं आत्मा सुख स्वरूप बन रही हूं। मैं आत्मा पवित्रता का स्तंभ बन रही हूं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बन रही हूं। शक्ति स्वरूप बन रही हूं। वाह बाबा वाह, आपने मुझ आत्मा को इन सभी शक्तियों से भरपूर कर दिया। मैं आत्मा अपने आप को आप समान मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव कर रही हूं। आपने आज मेरा जीवन धन्य धन्य कर दिया। मुझे इन सब शक्तियों से भरपूर करके इतनी अमूल्य गिफ्ट शक्तियों और गुणों की आपसे मुझे प्राप्त हुई है। मैं अपने परम पिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे भगवान मेरे पिता, मैं आपको आज से अपना पिता मानते हुए अपने जीवन को अपने आप को आपका बच्चा बनाते हुए अपना जीवन आपको समर्पित करते ऐसी अपने अंदर वैल्यूज को बढ़ते हुए मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई। अब पुनः मैं आत्मा रिटर्न जर्नी कर रही हूं परमधाम से नीचे उतरते हुए तारागण सूर्य चंद्र आकाश को पार करते हुए इस साकार पृथ्वी लोक में अपने शरीर भान में आकर
अब मैं अपने आप को आत्मा और शरीर दोनों को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ और जो शक्तियाँ मैंने अपने अंदर समाई हैं उन्हें मैं विश्व सेवा के लिए विश्व में फैला रही हूँ। इस हॉल में, हॉल के बाहर, आबू के बाहर, राजस्थान के बाहर, भारत के बाहर, पूरे विश्व में सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम की शक्तियाँ फैल रही हैं। विश्व में प्रकृति, पांचों तत्व, सभी आत्माएं, सृष्टि, सभी को ये शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं और मैं अनुभव कर रही हूँ कि सभी झूम रहे हैं ये शक्तियाँ प्राप्त कर। वाह बाबा, थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लास्ट में दो शब्द और बोलना चाहूंगी कि किस तरह से ये जो चलता है उसमें हमें करना है। द लाइफ यू हैव रिसीव्ड इज वेरी ब्यूटिफुल, सो लेट्स लिव इट मीनिंगफुली। आए हो यहाँ ऐसे स्थान पे तो ये सीख के जाइए, अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाइए। ट्राई टू लिव विद पॉजिटिव थॉट्स इन ऑल सिचुएशंस, कैसा भी सिचुएशन आया, क्योंकि जो आता है वो चला जाता है, इसलिए आप अपने पॉजिटिव थॉट्स बना के रखिए। बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू इफ इट विल डेफिनेटली हैपन, क्योंकि मेरे थॉट संकल्प से मैं अपनी सृष्टि रचती हूँ। इफ आई हैव ए पॉजिटिव थॉट दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल देन डेफिनेटली दैट विल हैपन। सरेंडर योर प्रॉब्लम्स टू गॉड, देर आर नो प्रॉब्लम्स दैट कैनॉट बी सॉल्व by God, have faith in Him. Start each day with the faith that you will make it wonderful. Wishing you all a wonderful life forever. Wish you a pleasant day. Om Shanti, Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लता दीदी जी, आप सभी को राजयोग का मेडिटेशन यहाँ सिखाया जाएगा, क्योंकि ये राजयोग मेडिटेशन कहीं भी और नहीं सीख सकते जो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है और जिसमें जीवन परिवर्तन होता है। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को। आपसे अनुरोध है कृपया अति संक्षिप्त में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अभी के रोहिणी बसापुर, प्रिंसिपल सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बैल होंगल कर्नाटका, आप आएंगे और अपने ग्रीटिंग्स देंगे।
Good afternoon, everyone. Beloved Rajivni sisters, honorable High Court judges, and distinguished guests on and off the dais, Om Shanti. Ladies and gentlemen, I believe that us is not just a profession performing our duties. Rather, we deal with the emotions of the people and render justice to the needy. We are the only institution wherein the people are tracing their hopes as a last ray of hope. We as a judges sit with the stories of pain, conflicts, human struggles, broken relationships and shattered trust. So we do not just deal with the files and laws, rather we deal with the human emotions. So I believe that amidst all this, we are expected to listen very patiently, remain impartial and decide amidst all the pressures, expectations and complexities. I think that is the same with the advocates as well, because the clients approach you at the first hand and you absorb their pain, anxieties and hopes.
you work so relentlessly and spend sleepless nights working for the case. It doesn't end there. Outside the court halls are the families and the people who are anxiously waiting for the justice to be delivered to them. And are the victims who are eagerly waiting for their dignities to be restored. And there are some accused persons who are hoping to be heard. They want that their voice needs to be heard. And sometimes inside the court, we must all agree that sometimes the atmosphere of the court raises up. The voices raise up. We get into the arguments. The atmosphere of the court sometimes may get disturbed. So, we should ask a simple question to ourselves. Who will solve the problem of the mind? Who is solving the problems of everyone? And who will heal the hearts of the people who are healing the injustice of others? I think the only solution lies with the esteemed Brahma Kumaris institution. Here we are taught to pause and to look inward. And they teach us the values, which is the topic of our session today, that is value-based system. When we imbibe the qualities and values like peace, love, harmony, compassion and inner strength, apart from that, when we connect ourselves with the supreme source of peace, who is our real father, something beautiful happens within us. We can see some transformation happening within us. The situation would be like the atmosphere of the court would be the same. The same pressures, the same deadlines, the busy schedule and hundreds of case files. But still, we stay stable and detached from everything that is happening outside. We are more stronger and are able to have a calm mind and a clear intellect. And we will also have emotional balance and inner strength to deliver a real justice to the people. So, I won't take much time. I know the time is running up. I would like to appeal to you all that we are taking so much time to prepare cases and running behind our family aspects. Maybe I believe that we all lose our tempers because maybe we are drained up and we are going through our own secret untold battles within. So, when we practice Raj Yoga meditation, we are able to acquire that inner strength. We devote so much time for our profession. I appeal to you all that take some time every day for yourself, for meditation and to imbibe the positive qualities in us. At the end, I would like to conclude my speech by saying that we believe that the courts are temples of justice. If the courts are believed to be the temples of justice, I think that our minds should be the temples of peace. Thank you. Om Shanti.
Thank you very much. Rohini sister, आपके बारे में मैं बताना चाहूंगी, आप बचपन से ही इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है और आपने इस मेडिटेशन का अभ्यास करके अपने जीवन में उसको उतारा है और आप जज हैं, तो आपकी सबसे पहली पोस्टिंग जब हुई थी तभी आप ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में ही थे, वहीं पे उसको उनको गुड न्यूज मिली थी और वो डे बाय डे बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। कहा जाता है मूर्ति छोटी है लेकिन इसकी कीर्ति बहुत महान है। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता घनश्याम यादव, जज कंज्यूमर कोर्ट जालौर, आप आएंगे और इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी शुभकामनाएं देंगे संक्षिप्त में।
ओम शांति। परम सत्ता श्री परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, को प्रणाम करता हूँ, अन्य अतिथि गणों को भी प्रणाम करता हूँ, सामने बैठे समस्त न्यायविदों को प्रणाम करता हूँ, इस परिसर में उपस्थित समस्त बीके भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। चूंकि विषय बहुत गंभीर है और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ इस विषय पर प्रकाश डाल दिया है, लेकिन मैं बैठे बैठे देख रहा था कि आप सभी लोग भी बहुत गंभीर होके गंभीर मुद्रा में सुन रहे हैं, क्योंकि गंभीर रहना चाहिए लेकिन इतना भी गंभीर नहीं रहना चाहिए कि चेहरे पे खुशी की झलक ही नहीं दिखे। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि यहाँ पे हम सबको आने का एक विशेष अवसर मिला है। तो निसंदेह हम उस परमपिता परमात्मा की नजरों में बहुत पुण्य आत्माएं हैं जो हमें यहाँ आने का अवसर मिला, और मैंने अपने अनुभव से जो सीखा है वो यही सीखा है कि किसी के चेहरे पे यदि आप एक पल भर के लिए भी मुस्कान या खुशी लाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य आपके जीवन में हो नहीं सकता है। और इसी कड़ी में मैं, चूंकि समय बहुत कम है और बोलने का अवसर भी लास्ट में दिया गया है, वो आपने गन्ने की मशीन देखी होगी जो जूस निकालते हैं, तो पहले गन्ना फंसाते हैं, फिर मोड़ के डालते हैं, फिर घुमा के डालते हैं, और लास्ट में जो नींबू और पुदीना वो फंसाया जाता है, तो मुझे तो नींबू फंसाने का अवसर मिला है। एक जोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक इंटरव्यू चल रहा था जवानों का, तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि एक जवान से पूछा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो सन 2000 की बातें हैं, उन्होंने कहा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि देश को आजादी कब मिली, तो उसने कहा, जवान ने कहा कि 1857 में नींव रखी गई थी और 1947 में संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त हुई। तीसरा क्वेश्चन ये था कि पृथ्वी कैसी है, तो जवान ने सोचा कि अगर मैं बता दूं पृथ्वी गोल है, हो सकता है ये लोग चपटी मानते हो पृथ्वी को, तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो उसने कहा कि साहब अभी वैज्ञानिकों का रिसर्च चल रहा है, अभी इस पे कोई रिजल्ट नहीं आया। अब दूसरा जवान का नंबर आया तो उसने जल्दबाजी में पूछा कि भाई आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन बताने का टाइम तो था नहीं, उसने क्या है उत्तर रट लिए तीनों। उसने सोचा कि ये मेरे से भी यही क्वेश्चन करने वाले हैं। अब दूसरे जवान से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसका पहला आंसर था श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अब वो सोचे कि हो सकता है एक नाम के दो लोग भी हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो बोले कि साहब 1857 में नींव रखी गई थी और 1947 में बड़ी संघर्ष से सफलता मिली। तीसरा क्वेश्चन पूछे तो उनका दिमाग खराब हो गया एकदम से, बोले कि गुस्से में आ गए कि आपका दिमाग खराब है, पागल हो आप यहाँ पे ऐसे आंसर दे रहे हो। बोले साहब अभी वैज्ञानिकों का रिसर्च चल रहा है, अभी रिजल्ट नहीं आया। चलो आप सभी से मिलने का अवसर मिला, आप सबने बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद, सबको फ्रेश कर दिया भाई सबने, है ना। भ्राता घनश्याम यादव जी भी ब्रह्मा कुमारी से रेगुलर स्टूडेंट है, हमारे यहाँ काफी जजेस है, ऐसे पूछेंगे तो जजेस कहते कि हमको काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हम नहीं आ सकते, लेकिन आप यहाँ आके देखेंगे जुरिस्ट्री में काफी जजेस हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, हाईकोर्ट जजेस भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, तो आप भी अगर किसी को संकोच हो तो वो संकोच मत कीजिए। अभी मैं आदरणीय पुष्पा दीदी जी, राजोगिनी बीके पुष्पा दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ, आप अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय पुष्पा दीदी जी इस विंग की चेयरपर्सन है और आप ब्रह्मा कुमारी का जो दिल्ली करोल बाग का मेन सेंटर है उसके आप डायरेक्टर हैं। आपको काफी सारे अवार्ड्स से नवाजा गया है, जिसमें शक्ति लाइफ टाइम अवार्ड योगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया 2015 में दिया गया था, और क्षेत्रीय मुख्य समाज सेविका पुरस्कार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना द्वारा 1995 में दिया गया था। प्रोमिनेंट पर्सनालिटी अवार्ड तेलुगु एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दिया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सम्मान सर्टिफिकेट भी दिया गया था, तथा वैश्य शिक्षा संस्थान दिल्ली के द्वारा
सरस्वती मेमेंटो भी आपको प्रदान किया गया था। आप पिछले 60 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क विश्वविद्यालय में हैं और 55 वर्षों से आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपका बहुत विस्तृत अनुभव है जिनका क्लास में हम सब कुछ सुनेंगे। अभी दीदी अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करेंगे। 2 लाइनें दीदी के लिए कहना चाहूंगी। सेवा, संस्कार और आध्यात्मिक शक्ति की अनुपम पहचान है आप। सेवा, संस्कार और आध्यात्मिक शक्ति की अनुपम पहचान है आप। न्याय और मूल्यों की सुंदर उड़ान है आप। राजयोग के प्रकाश से जीवन में चेतना जगाती है आप। राजयोग के प्रकाश से जीवन में नई चेतना जगाती है आप। जूरिस्ट विंग को श्रेष्ठ दिशा देकर सबका मान बढ़ाती है आप। ऐसे आदरणीय दीदी जी को हम सुनेंगे।
ओम शांति। मंच पर विराजित हमारे अति सम्माननीय हस्तियां, वक्तागण, विशेष रूप से आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस गुरुपाल सिंह जी और अन्य सभी जजेस, एडवोकेट्स, आप सब लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हमारे आमंत्रित मेहमान, सबसे पहले तो मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत शब्द तो कितने भी कहे जा सकते हैं शुक्रिया करती हूँ, सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ और शुभकामना रखती हूँ कि आप यहाँ से अच्छी तरह से भरपूर होकर, संतुष्ट होकर और जीवन का एक लक्ष्य बनाकर जाएंगे। यूं तो आप सब अपने प्रोफेशन में माहिर हैं, इंटेलिजेंट हैं, अनुभवी हैं, लेकिन हम एक संदेश आपको देना चाहते हैं जो दिया ही जा रहा है ऑलरेडी और आप सब महसूस भी कर रहे हैं, इसके विषय से भी आप समझ रहे हैं, वैल्यू बेस्ड जस्टिस। और हमारे चीफ गेस्ट साहब ने तो ये बात कही ही, सत्य की बात सुनाई ही, और आप सब भी इस बात को अंदर से समझते ही हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी आपको अपने कार्य क्षेत्र में सहजता रहे, सफलता रहे, निश्चिंतता रहे, अन्यों को भी आपसे ऐसा ही अनुभव हो और ये भारत देश तो क्या विश्व ही ऐसा सुखदाई बन जाए, मुझे आपसे और आपको मुझसे यही हम चाहते हैं। और उसके लिए बड़ा आवश्यक है स्पिरिचुअलिटी का होना। मैं सिर्फ 2 शब्द ही कहूंगी, समय की बहुत सीमा है, क्योंकि कानून बाह्य रूप से कंट्रोल करता है और आध्यात्मिकता आंतरिक रूप से कंट्रोल करती है, क्योंकि उससे हमें मनोबल मिलता है, जागरूकता मिलती है, हमारी इनर पावर्स बढ़ती हैं, जिससे जजमेंट करना और बैलेंस करना बड़ा आसान हो जाता है। कोई भी कर्म मनुष्य जब करता है तो एक बार उसकी अंतरात्मा अंदर से अवश्य उसको झंझोड़ती है, हिलाती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण उस आवाज को हम दबा जाते हैं और आप सोच सकते हैं उसका परिणाम क्या होगा। और कुछ भी हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, कुछ भी करते, देखते उठते, कर्म करते हैं, उसका पहला प्रभाव हमारा स्वयं पर आता है। और चाहे वो कर्म हमारा किसी भी प्राणी से हुआ हो, इवन नजदीकी रिश्तेदार से भी चाहे हुआ हो या अनजान से भी हुआ हो, और आध्यात्मिकता कर्म फिलॉसफी की डीपनेस बताती है। आज कानून समाज की रक्षा के लिए है, मानव की रक्षा के लिए सिस्टम भी है, दंड व्यवस्था भी है, सब कुछ है, फिर भी समाज की हालत क्या है वो आप जानते हैं, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं। तो उसका कारण क्या और उसका फिर हल क्या, हल है स्पिरिचुअलिटी, ताकि मैं भी सुखी बनूं, समाज सुखी बने, एक ऐसा विश्व बन जाए जिसमें सदा सुख और शांति हो। यहाँ का यही ही लक्ष्य है और परमात्मा उसका दाता है जो ये सब कुछ कराने वाला है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पा दीदी जी, आपने सारे इस पूरे सेशन का सार बहुत संक्षिप्त में हम सभी को समझा दिया। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ एडवोकेट आर के राठी, एग्जीक्यूटिव मेंबर जूरिस्ट विंग और एडवोकेट हाईकोर्ट ऑफ राजस्थान जोधपुर। आप भी पिछले 35 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियमित रूप के स्टूडेंट हैं और आप अपार निश्चय बुद्धि हैं। आपके लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूंगी, जंगल में रहो या बस्ती में, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, पर रहो हमेशा प्रभु प्रेम की बस्ती में, पर रहो हमेशा प्रभु प्रेम की बस्ती में, क्योंकि जो डूबे परमपिता याद की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। क्योंकि आप परमात्मा की याद में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेज ऊपर होती जाएगी, ऑटोमेटिक सफलता मिलती जाएगी। अभी आभार प्रदर्शन का कार्यभार मैं आपको दे रही हूँ, साथ साथ में आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका सम्मान और उनको सौगात भी दी जाएगी। बहनों से अनुरोध है आप मेहमानों का सम्मान कर रहे हैं।
ओम शांति सदा बहन। सबसे पहले आदरणीय और माननीय और शिव बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने आज हम सबको यहाँ पे एकत्रित किया है। मंच पर आसीन परम आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय श्री कुरपाल सिंह जी अहूलियावाला साहब, न्यायाधिपति श्री बी डी राठी साहब, दिव्य दीदी बी के सुदेश साहिबा, दिव्य दीदी बी के पुष्पा जी, राजयोगी बी के करुणा भाई साहब, माननीय भूतपूर्व न्यायाधिपति बी के नायक साहब, दीदी डॉक्टर बी के रश्मि ओझा जी, भाई पीताम्बर आचार्य जी, बी के दीदी लता अग्रवाल, नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग, और बी के भाई घनश्याम जी यादव और बी के रोहिणी बहन जी और श्रद्धा बहन को, और इस गरिमामय कॉन्फ्रेंस में उपस्थित विधिक और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत सभी सामान्य सदस्य। आज हम यहाँ एक बेहद विषय वैल्यू बेस्ड जस्टिस द सोल ऑफ लॉ अर्थात मूल्य आधारित न्याय कानून की आत्मा पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि कानून की देह में आध्यात्मिक की आत्मा को महसूस करने और मानवीय मूल्यों के प्राण फूंकने का एक पवित्र प्रयास करने हेतु उपस्थित हुए हैं, जो एक ऐतिहासिक कदम है। इस सत्र के अत्यंत प्रेरणादायक कार्यक्रम में समापन पर धन्यवाद ज्ञापित करने मेरे लिए केवल एक शिष्टाचार नहीं बल्कि एक परम गौरव का क्षण है। आज हमने सबने महसूस किया है कि मूल्यों के बिना कानून एक शरीर के समान है जिसमें प्राण न हो, यहाँ केवल ठंडा कठोर और यांत्रिक बनकर रह जाता है, जबकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विचारों को समाहित करके मूल्य आधारित न्याय कानूनी पेशों को केवल दलील जीतने का व्यापार से ऊपर उठाकर समाज में सद्भाव और शांति बहाल करने के लिए एक पवित्र मिशन में बदल सकते हैं। हमें यह याद दिलाता है कि समाज में सच्ची व्यवस्था केवल दंड के डर से नहीं बल्कि आंतरिक शांति, आत्म अनुशासन और सभी आत्माओं के प्रति सम्मान की नींव पर ही स्थापित की जा सकती है। यानी कि कानून जब अपनी वैधानिक शुष्कता से ऊपर उठता है तभी वह न्याय की पावन पीठ पर प्रतिस्थापित हो पाता है। मैं हमारे मध्य स्टेज पर मंशासीन दीदी, दिव्य दीदी बी के सुरेश साहिबा, माननीय न्यायाधीश मूर्तिगण, राष्ट्रीय समन्वयक जूरिस्ट विंग के सदस्यगण, एवं विदित विद्वानों का अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने बेहद महत्वपूर्ण विषय पर विचार रखने हेतु अपने व्यस्तम न्यायिक और कार्यप्रति दायित्व में से समय निकालकर हमारे इस विषय वैल्यू बेस्ड जस्टिस द सोल ऑफ लॉ अर्थात मूल्य आधारित न्याय कानून की आत्मा पर अपने अनुभव के आधारों पर पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को सफल बनाने एवं वैधानिक व्यवहारिक दिशा प्रदान की। यह भी स्पष्ट किया है कि मूल्य ही कानून की आत्मा है जिन्हें बिना न्याय निष्प्राण है। मैं पुनः यहाँ उपस्थित सभी कानूनविदों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी सक्रिय भागीदारी और विचार विमर्श इस बात का प्रमाण है कि हमारी न्यायपालिका और बार केवल मुकदमों को जीतने में नहीं बल्कि समाज में वास्तविक शांति और सद्भाव स्थापित करने में विश्वास करती है। मैं सभी ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पधारे सभी सम्मानित सदस्य प्रमुख प्रबुद्ध अधिवक्ताओं और इस आयोजन के सूत्रधारों आयोजनों समिति और तकनीकी सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिनके सामूहिक प्रयासों से यह कार्यक्रम बिना बाधा के सुचारू रूप से संपन्न हो सका है। अंत में मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक आत्मा का धन्यवाद करते हुए मैं इतना कहूंगा कि आइए आज हम इस मन से यह संकल्प लेकर जाएं कि हम कानून के अक्षरों के साथ साथ उसकी वास्तविक आत्मा अर्थात करुणा सत्य निष्पक्षता और मूल्य आधारित न्याय और राजयोग की शांति को अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में उतारेंगे। जहां न्याय में करुणा और मूल्य का वास होता है जहां न्याय में करुणा और मूल्यों का वास होता है वहीं वास्तविक न्याय होता है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार। ओम शांति।
आभार का भार वहन करने के लिए भ्राता राठी जी आपका भी बहुत बहुत आभार है।